तारा परी सोनल परी को ढूंढ लेती है और मीनल परी की मदद से उसका रूप बदलकर अधेड़ उम्र की औरत बना देती है, जिससे अमन को उन लोगों पर कोई शक ना हो। अमन जैसे ही ये देखता है कि उस राक्षस की नज़र उसकी बीवी पर पड़ चुकी थी, तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठता है और जिन रूप में आकर उस राक्षस से युद्ध करना शुरू कर देता है। दोनों में टक्कर की लड़ाई शुरू हो गई थी। तब तक तारा परी उस राक्षस के बारे में उस बोतल पर लिखा हुआ पढ़ने लगती है। काफी गुस्से से अमन उसे राक्षस से लड़ाई कर रहा था, लेकिन वो राक्षस हर बार उसकी लड़ाई का मुंहतोड़ जवाब दे रहा था। तारा परी ये सब कुछ अपनी आंखों से देखे जा रही थी। सोनल परी और मीनल परी तारा परी के पीछे छुपी हुई थी। तभी मीनल परी ने सोनल परी से कहा, तारा, मुझे नहीं लगता कि इस राक्षस से अमन जीचू जीत पाएंगे, आपको कुछ करना होगा। लेकिन तभी तारा परी ने उसे कहा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो इसमें अपनी शक्ति का भी प्रयोग नहीं कर सकती हूँ। तुम अच्छे से इस बात को जानती हो, कुलदेवता ने मुझे मना किया है, मैं अपनी शक्तियां प्रयोग नहीं कर सकती हूँ। तब सोनल परी ने कहा, तो क्या हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अमन जीजू का साथ दे दें? तब तारा परी मना करते हुए बोली थी, इस पोर्टल पर साफ साफ लिखा हुआ है, इस जिन को हराया नहीं जा सकता है, इसे केवल इस पोर्टल में कैद किया जा सकता है। क्या या ये सुनते ही सोनल परी और मीनल परी शॉक्ड हो गई थी। तब सोनल परी, तो फिर ये बात आप अमन जी को बता क्यों नहीं देती हैं कि इस जिन से लड़ना बेकार है, इसे हराया नहीं जा सकता है। तब तारा परी, नहीं, मैं अमन सर से ये बात नहीं कह सकती हूँ, अगर मैंने उनसे ये बात बोली तो उन्हें शक, मुझ पर शक हो सकता है कि मुझे ये कैसे पता चला कि इस जिन को नहीं हराया जा सकता है, तो इससे अच्छा है वो स्वयं अपनी आंखों से इस राक्षस की ताकत को देखने। तारा परी और सोनल परी बात कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा उस राक्षस ने अमन के ऊपर आग के शोले बरसाने शुरू कर दिए थे, जिससे अमन सहन नहीं कर पाया और वो दूर जा गिरा था, और गिरते ही अमन वापस अपने इंसानी रूप में आ गया था। तब तारा परी दौड़कर अमन के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। उस राक्षस ने जैसे तारा परी को अमन के साथ देखा, वो जलकर राख हो गया और गुस्से में तारा परी से बोला था, हाँ, खूबसूरत हसीन लड़की, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ और मेरे पास आ जाओ। केवल 30 दिन मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, मुझे केवल तुम्हारे साथ 30 रातें गुजारनी है, क्योंकि मैं इस बोतल में 300 साल से कैद था। अपने देवता की पूजा करने के बाद मुझे 30 रात किसी दुनियावी लड़की के साथ गुजारनी होगी, तभी जाकर मैं हमेशा के लिए इस दुनिया में रह सकता हूँ, वरना मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा जब तक कि मैं किसी औरत के साथ 30 दिनों तक संभोग नहीं कर लेता। तब तक इस दुनिया में आज़ाद होकर रहना मेरे लिए संभव नहीं है, इसके लिए मैंने तुझे चुना है, तो तुझे मेरे साथ रहना होगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहीं इसी वक्त तेरे पति की जान ले लूंगा और साथ ही साथ तेरे इन दो साथियों को भी मार डालूंगा, राक्षस ने तारा परी को धमकी देते हुए कहा था। अब राक्षस की बात सुनकर अमन पूरी तरह से तप गया था, और चूंकि वो उस राक्षस की शक्ति अपनी आंखों से देख चुका था, वो समझ चुका था कि वो उसे नहीं हरा सकता है। इस राक्षस को हराने के लिए उसे कुछ और सोचना होगा। अभी अमन सोच ही रहा था कि तभी तारा परी ने उस राक्षस से कहा, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तारा परी की बात सुनकर अमन उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा था। तब तारा परी आगे बोली थी, लेकिन तुम मुझसे झूठ क्यों कह रहे हो कि तुम 300 सालों तक इस मामूली सी बोतल में रहे हो, जबकि तुम्हारा जिस्म इतना बड़ा है तो तुम कैसे इस बोतल में रह सकते हो? तब वो राक्षस बोला था कि तुम क्या मेरी शक्ति को कमाक रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ कह रहा हूँ? मेरी कही गई एक एक बात शत प्रतिशत सत्य है, मैं 300 सालों से एक श्राप के कारण इस बोतल में कैद था। तब तारा परी, हे दुष्ट राक्षस, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूँ, तुम इतने बड़े विशाल हो और ये बोतल बिल्कुल छोटी सी है, तो तुम कैसे रह सकते हो इस बोतल में? तब वो राक्षस, अच्छा तो तुझे मेरी बातों का यकीन नहीं हो रहा है, तो तू रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। ऐसा कह वो राक्षस एक छोटे रूप में बदल गया और उस बोतल के अंदर चला गया, और मौथा देखते ही तारा परी ने उस बोतल का ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया। देखते ही देखते वो राक्षस उस बोतल में कैद हो गया। राक्षस के कैद होते ही सोनल परी मीनल परी की खुशियों का ठिकाना न रहा। अमन भी तारा परी की तारीफ किए बिना न रह सका। तब तारा परी ने अमन को बोतल देते हुए कहा, अमन सर, आप इस बोतल को कहीं दूर फेंकाइए ताकि ये राक्षस वापस से आजाद ना हो सके और किसी को तंग ना करे। अमन ने हाँ में सर हिलाया और तारा परी के हाथ से वो बोतल लेकर मान की तेज दौड़ने वाली शक्ति का प्रयोग करके उसी जंगल में बने हुए गहरे कुएं में वो बोतल फेंक आया। इस तरह से अपनी सूझबूझ से तारा परी ने हमेशा के लिए उस राक्षस से अपना पीछा छुड़ा लिया था। तभी अमन ने तारा परी से कहा, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। तारा परी सोनल परी और मीनल परी को लेकर उस जंगल के रास्ते से सड़क पर आ गई, जहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, क्योंकि मीनल परी और सोनल परी दोनों अलग अलग वेश में थे। तब अमन ने उन्हें कहा कि तुम भी हमारे साथ हमारी गाड़ी में चलो, हम तुम्हें तुम्हारे गाँव में छोड़ देंगे। लेकिन सोनल परी ने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं नहीं साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी ऐसे टाइम पर मदद की, लेकिन हमारा गांव पास में है, हम अपने भाई के साथ भाई को लेकर चले जाएंगे। अमन, क्या आप लोग श्योर हो कि आप लोग चले जाओगे और आपको मदद की जरूरत नहीं है? तब सोनल परी, हमारा गांव पास में ही है, हम चले जाएंगे। वो तो हमारी किस्मत खराब थी जो आज हम इस राक्षस के हत्थे चढ़ गए, वरना यहाँ तक तो हम हर रोज अपनी बकरियाँ चराने आते हैं। सोनल परी ने गांव की भाषा इस्तेमाल करते हुए कहा और बोली थी, आप लोगों ने हमारी जान बचाई है, हमारी मदद की है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं, बहुत रात हो गई है, हमारी माँ हमारी राह देख रही होगी। ऐसा कहकर सोनल परी बच्चा बनी हुई अपने भाई का हाथ पकड़कर सड़क के किनारे किनारे चल पड़ी थी। तब तारा परी, अमन सर, मुझे लगता है इन लोगों का घर यहीं पास में है, तो ये लोग चले जाएंगे, और वैसे भी हमें तो इस ओर जाना है, अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, वैसे भी करिश्मा मॉम हमारी राह देख रही होंगी। तब अमन, तुम ठीक कह रही हो, अब हमें भी घर के लिए चलना चाहिए। कुछ ही देर में अमन और तारा परी की गाड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी और जल्दी ही वो लोग शहर पहुंच गए थे। वहीं करिश्मा जी उनकी राह देखते देखते थक चुकी थी, क्योंकि जंगल में नेटवर्क न होने के कारण अमन का फोन नहीं मिल रहा था, सो अब उनकी फिक्र भी सताने लगी थी। वेल, जैसे उन्होंने तारा परी और अमन को साथ में देखा तो उनका सारा डर छूमंतर हो गया था और उन्होंने सारे रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से तारा परी का गृह प्रवेश करवाया था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो काली शक्तियों के मालिक अमित का बिच्छू उसका इंतजार कर रहा है।
तभी सब साथ सज्जा देखकर अमन ने बड़े ध्यान से तारा परी को देखा और उसके करीब जाकर उसके कान में बोला था, तुम तैयार हो ना आज रात के लिए? अमन की बात सुनकर तारा परी के कान लाल हो गए थे। उसने अमन को कोई जवाब नहीं दिया और शर्माकर अंदर चली गई। जैसे ही वो अपने कमरे में गई, उसने कमरे का नज़ारा देखा तो वो हैरान रह गई। करिश्मा जी ने तारा परी और अमन का कमरा खूबसूरती से सजाया था। पूरा कमरा रंग बिरंगे फूलों से भला पड़ा था, खूबसूरत लग रहा था। तारा परी का दिल चाह रहा था कि वो चारों ओर घूमती जाए, खूब नाचे। तारा परी को उस वक्त बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारों को देखकर तारा परी का दिल खुशी से झूम उठा था। और तभी अचानक तारा परी की नज़र कमरे में रखे हुए एक बॉक्स पर गई। तारा परी ने जैसे ही उसे खोलकर देखा तो उसकी आंखें हैरत के मारे फटी रह गई थीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत लाल रंग का जोड़ा रखा हुआ था। उस जोड़े की खूबसूरती देखकर अनायास ही तारा परी का हाथ उस जोड़े पर फिसलने लगा था। तभी करिश्मा जी वहां आईं और तारा परी के सर पर हाथ रखते हुए बोली थीं, बेटी, ये हमारा खानदानी शादी का जोड़ा है, पति से मिलन की रात को तुम्हें यही जोड़ा पहनना होगा और खूब सोला सिंगार करना होगा और फिर अमन के सामने जाना होगा। तब तारा परी, लेकिन मॉम, मैं कैसे, क्या, अकेले कैसे तैयार होंगी? तारा परी ने उलझते हुए कहा था। तब करिश्मा जी हंसते हुए बोली, ओहो बेटी, तुम भूल जाती हो, तुम्हारी सासू माँ कोई आम सासू माँ नहीं है, वो जिन है, जिन जिसके पास ढेर सारी शक्तियाँ हैं। और रही बात तुम्हें तैयार करने की, तो ये लो। ऐसा कहते हुए करिश्मा जी ने चुटकी बजाई और चुटकी बजाते ही चार खूबसूरत लड़कियाँ वहाँ आ गईं। तारा परी की आँखें हैरानी से फैल गई थीं। करिश्मा जी ने उन लड़कियों से कहा, मेरी बहू को इतना खूबसूरती से सजाओ कि जो अमन उसे देखे तो देखता ही रह जाए। तारा परी करिश्मा जी की बात सुनकर शर्मा गई। जल्दी ही उन चारों लड़कियों ने शादी का जोड़ा पहनाकर, खूब सारे जेवरात पहनाकर तारा को बहुत ही खूबसूरत दुल्हन बना दिया था, और वो ये देखकर हैरान रह गई थी कि उसको तैयार होने के कुछ क्षण के पश्चात लड़कियां गायब हो गई थीं। तब तारा परी, छोड़ो, मेरा काम तो हो ही गया था, तो उसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए वो बेड पर जाकर एक बड़ा सा घूंघट लेकर बैठ गई थी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी अमन उसके पास आया और तारा परी का इतना लंबा घूंघट देखकर चौंक गया और उसके करीब बैठते हुए मजाकिया लहजे में बोला, अभी पूरे रास्ते मैं तुम्हें देखते हुए आया हूँ और तुम अब अचानक से इतना बड़ा घूंघट डालकर बैठ गई हूँ? तब तारा परी ने घूंघट के अंदर से ही जवाब दिया, करिश्मा मॉम ने कहा है जब तक कि आप मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगे तब तक आप मुझे नहीं देख सकते हो। तारा परी की बात सुनकर अमन ना समझी से अपना सर खुजाने लगा था और बोला, ठीक है, मैं अभी मॉम से बात करके आता हूँ। इतना कहकर अमन कमरे से बाहर चला गया। तभी काली शक्तियों के मालिक अमित का भेजा गया बिच्छू, जो कि ना जाने कब से तारा परी का उसके कमरे में इंतजार कर रहा था, उसी के पलंग के नीचे बैठा हुआ सारी बातें सुन रहा था।